ஓம் சாந்தி, ஓம் சாந்தி, ஓம் சாந்தி. கல் பியாரே அவ்யக்த பாப் தாதா நே தோ ஹம் சப்கோ ஓம் சாந்தி கே அர்த் ஸ்வரூப் மே ஸ்தித் ஹோதே டான்ஸ் மாஸ்டர் நே பஹுத் அச்சா டான்ஸ் கராயா, மன் கா டான்ஸ் கியா ஹை? கேத்த மன் குஷி மே நாச் உட்டா, பரந்து மன் குஷி மே தப் நாச்தா ஹை ஜப் கோய் ஜீவன் மே சந்துஷ்டதா அத்வா ப்ராப்தி ஹோத்தி ஹை, ப்ராப்தி கா அனுபவ ஹை. ஆர் டான்ஸ் கா மத்லப் ஹார்மனி, கோய் டான்ஸ் க்ருப் டான்ஸ் கரே ஆர் அகர் ஏக் கா ஹாத் நீச்சே தூஸ்ரே கா ஊப்பர் தோ உஸ் டான்ஸ் கோ டான்ஸ் நஹீ மானா ஜாதா. ஃப்ளெக்ஸிபிலிட்டி பி ஹோ, யூனிட்டி பி ஹோ, ஏக் ரஸ் ஹோ, ஏக் ஜைசா ஹோ. தோ ஜேசே பாபா கேத்தே ஹை ஜப் மன் கி சாந்தி கேத்தே ஹோ தோ காலி மன் கி சாந்தி யே சப்த சம்பூரண் நஹீ ஹை, மன் ஆத்மா கி சக்தி ஹை. தோ மன் ஜோ சங்கல்ப கர ரஹா ஹை சாந்தி கா, அனுபூதி கர்னா சாஹதா ஹை அத்வா அனுபூதி கர ரஹா ஹை சாந்தி கா, சாந்தி கி சக்தி. பரந்து மன் கோ சாந்த் யா அஷாந்த் கர்னே வாலி புத்தி ஹை. ஜேசா புத்தி கா நிர்ணய, ஜேசி புத்தி கி பரக், ஜிஸ் தரஹ கி புத்தி கி சமஜ், உஸ் அனுசார் சங்கல்ப் அத்வா விகல்ப் சல்தே ஹை. ஆர் ஜேசா சங்கல்ப் ஆர் விகல்ப், திருட சங்கல்ப் யா சன்ஷய கா சங்கல்ப், உஸ் அனுசார் விசார் வியவஹார் பன் ஜாதா ஹை, ஆர் வோ வியவஹார் சன்ஸ்கார் பன் ஜாதா ஹை. சன்ஸ்கார் கோ வியவஹார் கோ எக்ஸ்பிரஷன் கஹா ஜாதா ஹை, யானி வோ திகாயி படதா ஹை. தோ ஐசே ஹி தீனோ கி மேல் கோ, யானி ஜப் டான்ஸ் கேத்தே ஹை தோ மன் புத்தி ஆர் சன்ஸ்கார் இன் தீனோ மே ஜப் ஏக்தா ஹை தோ மன் குஷி மே நாச்தா ஹை. காலி முஜே சாந்தி சாஹியே, மன் கி சாந்தி சாஹியே, வோ இச்சா ஹை மன் கி, மன் கா சங்கல்ப ஹை. நிச்சய ஹை மே ஆத்மா சாந்த் ஸ்வரூப் ஹூம். तो कल बाबा ने अपने बच्चों के चेहरे का वर्णन करते हुए, मुस्कुराहट का वर्णन करते हुए, रूहानी चमक का वर्णन करते हुए, वो जो संस्कार विचार एक स्वभाव अथवा स्वरूप में आ गया, वो स्वरूप स्थिति बन गई ना, स्वस्थिति है मन, यानी वो मन की अवस्था हर्षित मुख, हर्षित चित्त. तो जो चित्त में है, जो चिंतन में है, वो चेहरे पर आता है. इसलिए कहा जाता है फेस इज द इंडेक्स ऑफ माइंड, चेहरा दिल का दर्पण है. अब माइंड कहते हैं पर हिंदी में कहते हैं चेहरा दिल का दर्पण है. कौन से दिल का दर्पण है? यानी आत्मा का जो मन है उसमें जो फीलिंग्स आ रही हैं, जो अनुभूति है, जो अनुभव हो रहा है, वो चेहरे पर प्रकट होता है. दुख की फीलिंग भी चेहरे पर दिखाई पड़ती है और सुख की फीलिंग, आनंद की फीलिंग भी चेहरे पर दिखाई पड़ती है. फेस पर दिखाई पड़ती है, जिसको बाबा ने कहा मुख से दिखाई पड़ रही है। और आईज आर द विंडोज ऑफ द सोल। आत्मा की स्थिति क्या है, आत्म अवस्था क्या है, वो दृष्टि से पता चलता है। वृत्ति का कनेक्शन दृष्टि से है, अथवा स्थिति का कनेक्शन हमारी दृष्टि और कृति से है। तो टॉपिक हमको मिला है स्वस्थिति के की संपन्नता, स्थिति की स्वतंत्रता के स्वरूप। तो बाबा भिन्न भिन्न तरह से अवस्था अथवा स्थिति का वर्णन करते हैं। अशरीरी अवस्था, अशरीरी, तो जब हम शरीर भान में हैं अथवा शरीर के अभिमान में हैं, देह के भान में या देह के अभिमान में। आज बाबा ने भान और अभिमान का भी अंतर बताया आज सवेरे की मुरली में। जब भान कहते हैं तो अपना जो हमारा स्वरूप है, मेल या फीमेल, ये भान आता है। मैं लड़का हूं, मैं लड़की हूं, मैं पुरुष हूं, मैं स्त्री हूं, ये देह का भान है। यानी जो हमारे शरीर का स्वरूप है उसकी स्मृति में, फिर अभिमान है उससे जो एक्सप्रेशन है, उसमें जो अनुभव कर कर के एक्सप्रेस कर रहे हैं, जो विशेषता है, जो प्राप्तियां हैं, वो कंपैरिजन है फिर दूसरों से। प्राप्ति में अभिमान है, मेरे को इस चीज का अभिमान, यानी प्राप्ति मेरे को ज्यादा उनको कम है। स्वरूप वही है। घर में भी अगर आप देखेंगे, दो भाई हैं, दो बहनें हैं, किसी चीज में विशेषता कोई है तो थोड़ा अभिमान आ जाएगा प्राप्ति का। तो उस अभिमान में अब भी अपने जो प्राप्ति है उसको खुद तो माना, परंतु दूसरे को भी मनवाने की कोशिश करेंगे, तू भी मान जो मैं मान रही हूं ना, जो मैं मान जानती हूं, मैं मानती हूं, तुम भी वो ही मानो। अभी अभी मेरी बात मान, अभी जो मैंने समझा तू भी वो ही जान। तो वो एक्सप्रेशन में अभिमान, भान और अभिमान का अंतर दिखाई पड़ने लगता है। दूसरे को मनवाने वाला, जो मैंने माना वही तू मान, तो अभिमान, और मैंने जो माना तुमने नहीं माना, तो फिर उसका व्यवहार में क्या दिखाई पड़ेगा, दूसरे का अपमान करेगा, अभिमानवश दूसरे का अपमान करेगा। तो वो जो भान अभिमान में बदल गया, अभिमान दूसरे का अपमान करने लगा, अपमान का आधार अहंकार, तो फिर वो क्या बदल गया, देह भान देह अभिमान में बदल गया, देह अभिमान देह अहंकार में बदल गया। बीज क्या है, देह का भान। इसलिए बाबा कहते देह भान को भी भूलो, देह को भी भूल जाओ, तुम देह नहीं हो, शरीर को भी भूल जाओ। भूलने का मतलब अब शरीर मर्यादा के हिसाब से याद रखना भी जरूरी है कि मैं ये जो मेरी मोटर है कौन सा मॉडल है, वो याद रखना भी जरूरी है। जीवन में संयम नियम के हिसाब से ये समझना भी जरूरी है। पर ये जो बाबा कहते भूल जाओ, मतलब उसके प्रभाव में नहीं आओ। जैसे कोई बहुत किसको चिंता होती है, परेशानी है, किसी चीज के प्रभाव में दुखी हो रहा है, कह रहे अरे छोड़ो ना, भूल जाओ ना, छोड़ दो ना इसको, भूल जाओ ना। अब भूल जाओ का मतलब यानी जो इतने प्रभाव में अपनी अवस्था को गिरावट में ले आयो, गिरावट में नहीं लाओ, अपनी इस अवस्था को मजबूत बना के रखो, यानी स्टेज को पावरफुल बना के रखो। तो अशरीरी यानी शरीर के भान से मैं न्यारा, बॉडी लेस, तो ये जो बॉडी का प्रभाव है उसमें हम जैसी जैसी हमारी स्मृति है, जैसी हमारी वृत्ति है, जैसी हमारी दृष्टि है, उसी हिसाब से हम अपने इन शरीर की कर्म इंद्रियों को उतना ही ज्यादा यूज करते हैं। अगर हमारी वृत्ति में किसी के प्रति नफरत की भावना है तो हमारी दृष्टि बार बार उसी वृत्ति से वो यूज होगी ना, दृष्टि, दृष्टि में दोष होएगा, दृष्टि में क्रिटिसिज्म आएगा, दृष्टि में अवगुण को दूसरे को ऐसे देखेंगे जो उनको थोड़ा अपमानित होने की फीलिंग देगा। मतलब क्या हुआ, इसी दृष्टि को बार बार ज्यादा यूज किया, किसी के प्रति नाराजगी हो गई, नाराज हो गए, अपसेट हुए, अब इस मुख को, जो मुख मधुर वाणी बोल रहा है अथवा मुख से मीठे बोल बोल के किसको सुख देने वाले बोल हैं, वही मुख फिर बार बार सिद्ध करेगा तुमने ये रॉन्ग किया। अच्छा, उनको डायरेक्ट नहीं बोलेगा, दूसरे को बोलेंगे, बार बार निंदा करेंगे, चुगली करेंगे, इसका मतलब मुख को बहुत बार यूज किया ना, मुख के बोल को बहुत बोला। तो मन क्या है, बहुत अंदर ही अंदर जो अंदर बोल रहा है वो फिर मुख से बहुत बार बोलना शुरू करेगा ना। मन शांत है, चित्त शांत है तो मुख की वाणी कम चलेगी। मन में किसी के प्रति शुभ भावना, शुभ कामना, मन की संतुष्टि है तो मुस्कुराहट से थोड़े शब्द बोल करके उस थोड़े शब्दों में शक्ति होगी। और अगर विरोध वाली बात है, वो शक्ति फोर्स वाली है, शक्ति देने वाली शक्ति नहीं है, दूसरों को भी शक्तिहीन करने वाली शक्ति है। तो कल बाबा ने कहा मुख की शक्ति कम करो, मन की शक्ति को बढ़ाओ। वो कौन सी मुख की शक्ति को कम करो, जिस मुख के बोल से हम दूसरे को दुख देते हैं वो दुख देने की ताकत हो गई ना व्यर्थ बोल की। और अगर मन शांत शीतल, मन का मौन है, मन बोल नहीं रहा बार बार, यानी व्यर्थ चिंतन में, व्यर्थ मन का जो बोल है वो चिंतन के साथ साथ जिस व्यक्ति के सामने नहीं भी है ना, जिसके प्रति कोई वैर भाव है, विरोध है, नाराजगी है, असंतुष्टता है, उस वक्त आप देखेंगे मन ज्यादा बोलता है। व्यक्ति सामने नहीं है, वो कोसों दूर बैठा हुआ है, हजारों माइल दूर बैठा हुआ है, मन उनसे बात कर रहा है। चांस मिला तो फोन पर भी बात कर रहा है, पर मन में भी बात कर रहा है। तो इसका मतलब है कि वो मन जब व्यर्थ चिंतन चल रहा है, फिर जो व्यर्थ चिंतन और नफरत का मन जो अंदर ही अपने तो उस बोल में दूसरे को दुख जरूर मिलेगा, दुख देने की शक्ति, सुख दुख दूर करने की शक्ति नहीं होगी, वो ऐसे ही मुख से बोल निकलेगा जैसे कि तीर निकला। और मन अगर मौन वाला है, यानी अंदर शुभ चिंतन है, स्वचिंतन है, आत्मिक भाव है, मनन चल रहा है, प्रभु चिंतन चल रहा है, स्वमन स्वचिंतन चल रहा है, तो फिर वही बोल मधुर बोल बंसुरी बजेगी। श्री कृष्ण मनमोहन को, भाई मनमोहन क्यों है, मनमोहन के हाथ में मुरली है। मन का मौन रखने से हाथ में मुरली आ जाती है, यानी मुख कम खुलता है, थोड़ा बोलेंगे, बोल थोड़े होएंगे। कुदरत ने ये जो जबान है, जीभ 32 ईंटों के पीछे रखी है, किले में रखी हुई है, और जिस समय मन नाराजगी वाला है, मुख कैसे खुलता है, कहते तीर की तरह बोला, तो मुख तीर, अगर वो तीर निकला तो एक कमान हो गई ना। मुख खुलता है तो कैसा होता है, दोनों ऊपर नीचे कमान की तरह खुला, तो जाके दूसरे को ऐसा चुभा जैसे तीर लगा। और बंसुरी बजती है तो मुख को ज्यादा नहीं खोलना पड़ता, बहुत थोड़ा खोलते हैं, थोड़े बोल बोलते हैं, तो इसलिए वो मुख का बोल कम ऑटोमेटिकली, बाबा ने कहा जब मन की शक्ति बढ़ेगी तो ये जो ऊपर नीचे होती है ना बात, व्यर्थ बोल हो जाता है, तो वो कम हो जाएगा अपने आप ही। इसलिए मन का मौन रखना माना जो हमारी जो ज्ञान इंद्रियां हैं और कर्म इंद्रियां हैं, इनका भी आप पे ही मौन हो जाएगा, यानी कम हो जाएगा, यूज इतना नहीं होगा उसको। जितना जितना हमारी अशरीरी अवस्था होती जाएगी, अशरीरी बॉडी लेस, लेस एंड लेस शरीर को यूज करना, कर्म इंद्रियों को ज्ञान इंद्रियों को जरूरत के समय यूज करना, और श्रेष्ठ संकल्प को एक्सप्रेस करने के लिए यूज करना। इसलिए वो वाक्य भी महावाक्य बन जाएंगे फिर, और श्रेष्ठ संकल्प वाले होंगे, शुभ भावना शुभ कामना वाले होंगे, तो वो उत्साह और उमंग दिलाने वाले होंगे, प्रेरणा देने वाले होंगे, वो थोड़े होंगे, वो वरदान बन जाएंगे। वरदान बहुत शब्दों के नहीं होते, वरदान थोड़े शब्दों के होते हैं। गालियां बहुत ज्यादा होती हैं, कोई किसको गाली देना शुरू करे, निंदा करे, उसकी जैसे कि वर्षा चलती रहेगी, कमान में से तीर निकलता ही रहेगा। वरदान एक दो शब्द निकलेंगे, तो मुख कम यूज हुआ ना, मुख की शक्ति कम मन की शक्ति ज्यादा, बॉडी लेस। यही कान आदत पड़ी हुई है व्यर्थ बातें सुनने की, तो बार बार अपने आप को सुनाते रहेंगे दूसरों को बोल के, मुख भी बोलेगा अपने कान भी सुनेंगे, फिर दूसरा कुछ बोलेगा तो फिर मेरे कान भी सुनेंगे, क्योंकि मैंने बोला तो दूसरा भी कुछ बोलेगा जरूर। हमने कथा कीर्तन करना शुरू किया तो कीर्तन मंडली बन जाएगी, हमने कथा करनी शुरू की तो दूसरे भी कथा करने वाले लग बहुत आ जाएंगे। इसलिए बाबा कहते हैं अब गीता ज्ञान सुनो, महाभारत, लास्ट वीक की एक मुरली थी, महाभारत रामायण और गीता का बहुत गहरा कनेक्शन है, भागवत चारों बातें बाबा ने कही थी, महाभारत, रामायण, गीता और भागवत का कनेक्शन है। आज बाबा ने कहा गीता का एपिसोड रिपीट हो रहा है। तो भगवान के गीता के महावाक्य थोड़े हैं, रामायण लंबी चौड़ी है, महाभारत भी बहुत बड़ा बुक है। तो अभी जब परमपिता परमात्मा हमको महावाक्य सुना रहे हैं, मधुर बोल सुना रहे हैं, निराकार है ना, अशरीरी है, तो अशरीरी शरीर में आते थोड़े बोल बोलते हैं। हमको भी मनन शक्ति, मन की शक्ति को बढ़ाते ऑटोमेटिकली मुख के बोल भी जरूरत के बोल बोलेंगे, कान भी कम यूज करेंगे। अभी तो कितने कान यूज करते हैं, कितनी खबरें सुनना चाहते हैं, तो जो हमने सुना, जो हमारे पास न्यूज गई, ये तीनों दरवाजों से जो न्यूज अंदर गई ना, खिड़कियों से, वेंटिलेटर से, इन खिड़कियों से जो देखा, आंखों से जो देखा वो न्यूज हो गई, कानों से जो सुना, और मुख से जो बोला उसको बार बार रिपीट किया, और किसी ने मुख से बोला तो हमारे पास आई, अनुभव कर लिया उस चीज का, उसका मंथन चलता रहेगा, अशांत करेगा ना मन को, व्यर्थ चिंतन, पर दर्शन, दोष दर्शन। तो इससे क्या हुआ, हमारी कान, हमने सुनी एक बार बात, परंतु रिपीट की तो वो मैं भी तो दोबारा मैंने भी तो सुनी ना, तो बॉडी को ज्यादा यूज किया, कर्म इंद्रियों का मौन नहीं हुआ ना। तो कल बाबा ने कहा शरीर का भी मौन, मन का भी मौन। तो जितना हमारी अवस्था मन के मौन से ऑटोमेटिकली अचल अडोल हो जाएगी, क्योंकि ये बाकी व्यर्थ बातें सुन के हलचल में आते हैं ना, डम मन डामाडोल होता है, व्यर्थ चिंतन चलेगा जरूर। तो अशरीरी होते अवस्था रहते करते बनाते बनाते दूसरी स्टेज है, व्यक्तियों की तरह हमारा, संसार के व्यक्तियों की तरह हमारा व्यवहार नहीं होएगा, बॉडीलेस, अव्यक्त। तो अव्यक्त में रूहानियत ज्यादा नजर आएगी। अशरीरी स्थिति का अभ्यास करते करते स्थिति अव्यक्त बन जाती है, दूसरे व्यक्तियों का भी प्रभाव नहीं पड़ता, कानों ने सुना अनसुनी कर देगा, क्यों कि कान ने सुना, बुद्धि ने फौरन निर्णय किया ये व्यर्थ बात है, फालतू है, फैसला कर लिया ना, फालतू है, तो समझदार बन के फालतू को अपने पास नहीं, पालतू नहीं बनाएगा ना। हमको आदत पड़ गई है फालतू को पालतू बना लेने की, पाल लेते हैं उसको अंदर बार बार, वो जैसे कि हम उसको इतना बड़ा संभाल रख करके रख रहे हैं, वही पोल्यूशन कर देता है, फिर वही बीमार कर देता है हमको, मन की अवस्था को बिगाड़ लेगा। तो आत्मा ने एकदम अपनी आत्मिक स्थिति में अपने भी व्यक्त के भाव से परे और दूसरों के भी प्रभाव से परे, साक्षी दृष्टा स्थिति, इसको बाबा ने दूसरे शब्दों में, यानी कर्म योगी होते हुए, कर्म योगी कर्म कर रहे हैं, कर्म इंद्रियों को यूज कर रहे हैं, पर जैसे कि योगी बन के यूज कर रहे हैं, वैसे भी कर्म इंद्रियों को यूज करते हैं परंतु माया के एजेंट के योगी बन के करते हैं। कोई ना कोई विकार का प्रभाव पड़ा तो हमने यूज किया ना, माया ने कर्म इंद्रियों को यूज कराया, विकारों ने कर्म इंद्रियों को यूज कराया, रावण के सेना में बन के यूज करते हैं और ये हम राम की सेना बन के यूज करते हैं। कर्म इंद्रियां यूज करते हैं, योगी बन के यूज करते हैं। वो योगी बन के यूज करते हैं तो जो पिछले किए हुए विकर्म हैं वो भी भस्म होते हैं। श्रेष्ठ कर्म करने से करते हैं तो आगे के लिए भी श्रेष्ठ कर्म बनता है। और अगर माया रावण के प्रभाव में दे अभिमान में या विकारों के वश होके कर्म इंद्रियां यूज करते हैं तो विकारों के वश जब कर्म इंद्रियां यूज होती हैं तो ज्यादा यूज होती है, यानी गुस्सा आएगा तो कर्म इंद्रियां बार बार यूज होएंगी, आंख भी यूज होएगी, जबान भी यूज होएगी, हाथ भी यूज होएगा, ज्यादा कट्ठी यूज होती है। रावण का प्रभाव हमारे अंदर आ गया तो उस कर्म से कर्म भोगना बन जाती है, कर्म है वो कर्म भोगना हो गई, कर्म योगी नहीं कर्म भोगी बन गए, दुख देने वाले कर्म, दुखी होने वाले कर्म। और कर्म योगी हैं दुख के कर्मों को काटने वाले। तो जितना जितना फिर हम कर्म यानी जितना अव्यक्त स्थिति में आते चले जाते हैं तो कर्म करते कर्म इंद्रियों के न्यारे जैसे लोटस फ्लावर की तरह, जिसको बाबा कहते हैं वृत्ति बदल गई प्रवृत्ति बदल गई, प्रवृत्ति में रहते पवित्र तो क्या हुआ, वृत्ति बदल गई, दृष्टि बदल गई, कर्म बदल गया, प्रवृत्ति पवित्र वृत्ति बन गई। पहले देव के भान में वृत्ति अपवित्र थी, दृष्टि में देह का भान तो विकारी वृत्ति थी, अब वो आत्मिक स्मृति आ गई तो जब आत्मिक स्थिति में अव्यक्त भाव में है तो ना दूसरे को व्यक्त स्वरूप में देखते ना अपने को अव्यक्त स्वरूप में देखते तो अशरीरी यानी सोल कॉन्शियस स्थिति। सोल कॉन्शियस में सोल कॉन्शियस स्थिति आत्मिक स्थिति है, आत्मिक स्वरूप की स्थिति है, तो वह आत्मा का संपन्न स्वरूप, कौन सा, गुण संपन्न ज्ञान स्वरूप आत्मा, शांत स्वरूप आत्मा, पवित्र स्वरूप आत्मा, शक्ति स्वरूप आत्मा। तो सोल कॉन्शियस स्थिति के अभ्यास से आत्मा ने गुण ज्यादा यूज किए कर्म में, व्यक्त प्रभाव भाव से परे हुए, दूसरे के प्रभाव से भी परे हो गए तो ऑटोमेटिकली अव्यक्त स्थिति अथवा फरिश्ता स्थिति, अपने शरीर से भी रिश्ता बदल गया। हमारा जो अपने शरीर से अपना रिश्ता अभिमान में, मेरा स्वभाव मेरी आदत, तो बाबा ने कहा ना मैं और मेरा ये माया का दरवाजा है आने का, कल बोला ना ये डोर है, ये दो दरवाजे हैं। और अव्यक्त स्थिति में न्यारापन है, डिटैच है, तो हम रहते पर प्रवृत्ति में रहते हुए भी जैसे कि कमल हृदय, तो भावना शुद्ध होगी ना, हृदय क्या है, फीलिंग्स, फीलिंग्स न्यारी रहेंगी, कमल हृदय कमल नैन हस्त कमल चरण कमल, तो कीचड़ नहीं लगेगा ना, वो कीचड़ से न्यारी स्थिति अव्यक्त स्थिति फरिश्ता वाली स्थिति बनती चली जाएगी ऑटोमेटिकली, अशरीरी स्थिति फिर निराकार स्थिति बन जाएगी, निराकार स्वरूप माना शक्ति स्वरूप, निरंकारी स्वरूप। गुण संपन्न बनते बनते अवस्था कैसी हो गई, शक्ति स्वरूप बनते, गुणों से गुणवान बनते बनते आत्मा में शक्ति भरती चली जाती है, दूसरे के प्रभाव में ना आने की। शीतल स्वभाव वाला दूसरे के गुस्से को शांत कर देगा ना। अगर मुझे धीरज की शक्ति मेरे में आई तो ऑटोमेटिकली गुस्सा तेजी से नहीं आएगा, धीरज से शांति, धीरज और शांति, धीरज और शांति आत्मा को जैसे कि थोड़ा अडोल बना देती है, अचल अडोल, महावीर। तो जो बाबा ने आत्मिक स्थिति के उसको दूसरे शब्दों में आत्मिक स्थिति कहे, अव्यक्त स्थिति कहे, अशरीरी स्थिति कहे, है चीज वही पर उसमें ताकत बढ़ती जाती है, शक्ति बढ़ती गई, नाम बदल गया। टोटल तो सोल कॉन्शियस स्थिति है ना, फिर स्थिति माना उसकी अवस्था मजबूत होती गई, जैसे नाम बदला, क्यों कि उसका गुण बदली हो गया, उसका काम बदली हो गया, उसका प्रभाव बदली हो बड़ा। तो आत्मा निराकार है तो मेरा असली स्वरूप तो निराकारी अवस्था ही है ना। हम अगर ज्ञान के हिसाब से देखें तो हमारी असली अवस्था निराकारी अवस्था है, निराकारी अवस्था, निराकार परमात्मा की संतान है, वो शक्तिशाली अवस्था है। वो निराकारी अवस्था बिल्कुल संपूर्ण पवित्र स्थिति की अवस्था है, पर निराकारी आत्मा साकार में है तो तब भी हम उसको कहेंगे अशरीरी होने का अभ्यास अनुभव करना है, मन के मौन का अभ्यास करना है। तो क्या अभ्यास करना है, मैं जो निराकारी आत्मा हूँ वो निराकारी बन के ही रहूं, निराकारी वाणी नहीं है, निराकार वतन को अव्यक्त, निराकारी वतन को निर्वाण अवस्था कहते हैं। तो मैं अगर निराकारी अवस्था में स्थित हूं तो मेरी स्थिति शक्तिशाली होगी ना। निराकारी स्थिति में वाणी नहीं है, निर्वाण वाणी से परे, वहां नेचुरली मौन है ना। यहां फिर मैं निराकारी स्थिति का अभ्यास करूं तो मन का मौन होगा, परंतु क्योंकि साकार में लेके रह के अभ्यास करना है तो वो अवस्था कमल फूल समान बनाने के लिए कर्म इंद्रियों में रहते अभ्यास करना होगा ना। ये कीचड़ कोई ऐसा नहीं है कि जो गृहस्थी हैं उनको कमल फूल समान रहना है और जिन्होंने शादी नहीं की है, परिवार वाले नहीं है, वो गृहस्थी नहीं है। नहीं, ये ग्रह है ना हमारा, इस शरीर में रहते हुए इस ग्रह में हम अगर स्थित है तो गृहस्थी है ना। 90-80% तो वाटर है ना बॉडी में, और बाकी तो मिट्टी मिट्टी है, कीचड़ ही है ना। तो इस कीचड़ में रह के मैं कमल फूल समान रहूं, उसमें रहते मेरी आत्मिक दृष्टि इतनी रहे जो मैं शुद्ध वृत्ति वाली, शुद्ध दृष्टि वाली रहूं, तो ये स्थिति कमल फूल समान स्थिति कहेंगे ना। स्थिति स्टेज, स्व स्थिति का स्वरूप, फिर से टॉपिक पर आती है, स्व स्थिति का स्वरूप। तो मेरी स्थिति कौन सी, कमल फूल समान स्थिति, आत्मिक स्थिति में रहते। तो बाबा हम बच्चों को स्व स्थिति का अनुभव करा रहे हैं, जिसको दूसरे शब्दों में स्वास्थ्य का ज्ञान दे रहे हैं। स्वास्थ्य का यानी स्वयं के स्वरूप की शुभ स्थिति अथवा श्रेष्ठ स्थिति, जिसको कहेंगे गणेश स्वरूप स्थिति। स्वास्थ्य का आज बाबा ने गणेश को और स्वास्थ्य का बताया ना। तो कैसे हमारी स्टेज, उस आज के हिसाब से तो बाबा ने खाते से कनेक्ट किया, आज की जो मुरली है उसमें तो स्वास्थ्य का को चौपड़े से कनेक्ट किया, यानी कमाई के चौपड़ा जिसको बोलते हैं ना, अकाउंट बुक से कनेक्ट किया। उस अकाउंट बुक में हमारी स्टेज में हमारी कमाई सतयुग में कितनी थी, फिर त्रेता में कितनी रही, द्वापर में लेफ्ट मार्ग में गए तो कमाई गवाई गवाना शुरू किया, कलयुग में हो गए तो बैंकरप्ट बन गए, फिर से अभी चढ़ती कला का समय, अभी कमाई का समय है। वो तो स्वस्तिका का सारा चक्कर में हमने कमाई कितनी की, गवाई कितनी हुई, हमारी स्टेज कैसे धीरे धीरे बढ़ी, और अब कमाई का समय है तो कैसे कमाई करनी है। परंतु वैसे बाबा जब स्वस्तिका का ज्ञान देते हैं तो हम आत्माएं, हमारी स्टेज सतो प्रधान कितनी थी, सतयुग में सतो प्रधान थी, तो अभी मुझे सतो प्रधान स्व स्थिति में रहना है, तो सत्य स्वरूप मेरा निराकारी स्वरूप है ना, पवित्र स्वरूप है, तो जितना जितना हमारा फिर ये फरिश्ते स्वरूप की स्थिति, अपने देह से रिश्ता ट्रस्टी होके रहने का, ग्रस्ती नहीं ट्रस्टी, जिसको बाबा ने लास्ट वीक की अव्यक्त मुरली में कहा था, इस संडे का ही तो था, कल परसों कल की तो बात है हाँ, कि मेरा मन कहते हो तो मन तो समर्पण कर दिया ना, मेरा थोड़ा ही रहा, मन तन धन समर्पण कर दिया तो मेरा नहीं हुआ ना, ट्रस्टी हो गया ना, तो मैं और मेरा कहते हो तो माया का दरवाजा खुल जाता है। तो इससे हम न्यारे होके ट्रस्टी होके रहे, ग्रस्ती ना रहे, तो ऑटोमेटिकली जैसे बाबा ने कहा, ए बाबा ने तो देखो ये कांटे के जंगल को फूल बना दिया है, तो हमको कमल के फूल से हमारी अवस्था खुशी और खुशबू फैलाने वाली बन जाएगी, खुश रहने वाली। कमल का फूल न्यारा है, खुशबू नहीं देता, खुशबू आती है रूहानियत की सुगंध से। तो दूसरे के साथ रहते हुए ना मैं खुद कांटा रहूं, ना दूसरे को कांटा चुभाऊं, कांटों के साथ रहते भी ना मेरे में काम विकार का कांटा रहे, ना क्रोध का रहे, ना कोई अवगुण कोई विकार का रहे, तो कमल फूल समान से गुलाब के फूल की स्थिति बन जाएगी ना, यानी सर्व गुण संपन्न बन जाएंगे, संपूर्ण निर्विकारी बन जाएंगे। तो वो स्थिति एकदम सर्वगुण संपन्न, सर्वगुण संपन्न, सोलह कला संपूर्ण, यानी आत्मा में पवित्रता की शक्ति बढ़ जाएगी, जिसको बाबा ने आज संपूर्ण सोलह कला पवित्रता की स्टेज बताई। तो यह हमारी संपूर्ण पवित्रता की स्टेज, जिनमें कोई भी विकार नहीं, निर्विकारी, तो निराकारी, निर्विकारी, निरहंकारी स्थिति। तो निराकारी निर्विकारी तब बन सकते जब हम अभ्यास करते, ये सब शरीर के भान से न्यारे रहते, अशरीरी होने का अभ्यास करते, ये स्मृति रहे कि हम सिर्फ निमित मात्र हैं, सेवाधारी हैं, निरंकारी सेवाधारी। तो जितना जितना निर्माण स्थिति सेवाधारी वाला संस्कार होगा, तो ये जो बाकी अहम भाव, वहम भाव, दूसरे पर प्रभाव डालने का संस्कार प्रभाव, उससे न्यारे होते चले जाएंगे। तो संपूर्ण स्थिति का स्वरूप देव स्वरूप है, दर्शन मुहूर्त स्वरूप है, दिव्य स्वरूप है। दूसरे शब्दों में ईश्वरीय गुणों से संपन्न स्वरूप है, ब्राह्मण पुरुषार्थी स्वरूप है, देवता प्राप्ति स्वरूप है। तो पुरुषार्थ से प्राप्ति स्वरूप शक्ति स्वरूप है, तो हम सर्वशक्तिवान की संतान, मास्टर सर्वशक्तिवान है, तो सर्व ईश्वरीय शक्ति स्वरूप विघ्न विनाशक स्वरूप है, जिसको कल बाबा ने वरदान में बताया या आज के वरदान में भी, प्रवृत्ति में रहते विघ्न अनेक आएंगे, विघ्न विनाशक स्वरूप है। चाहे तन का रोग, अपने अपने संस्कारों के विघ्न, प्रकृति का विघ्न, व्यक्तियों का विघ्न, परिवार का विघ्न, कर्मों के हिसाब किताब का विघ्न, उन सबको समाप्त करने की शक्ति यानी मास्टर सर्वशक्तिमान की स्थिति, दूसरे शब्दों में कहेंगे हमारी योग युक्त स्थिति होगी, उसका उसकी स्टेज है जैसे योगी जीवन, कर्म करते योगी। तो मास्टर सर्वशक्तिमान अपने लिए योगी, डिटैच और विश्व कल्याणकारी, परोपकारी, क्षमा भाव वाला, ईश्वरीय शक्ति, ईश्वरीय शक्तियां अलग चीज है। संगम पर ईश्वरीय शक्तियां मतलब बाबा की पावर, ज्ञान की शक्ति, शांति की शक्ति, प्रेम की शक्ति, पवित्रता की शक्ति, क्षमा की शक्ति, भुला देने की शक्ति। ब्राह्मण शक्तियां अलग चीज है। ब्राह्मण शक्तियां समेटने की शक्ति, वो देवताओं की शक्तियां नहीं है, देवताओं को समेटने की जरूरत नहीं है, किसी चीज को समाने की शक्ति की जरूरत नहीं है, सहन करने की शक्ति की जरूरत नहीं है। तो ये जो अष्ट नव शक्तियां हम दिखाते हैं, ये हम ब्राह्मणों के पुरुषार्थ की शक्तियां हैं। तो जितना जितना हम इन शक्ति संपन्न स्टेज में ईश्वरीय शक्ति संपन्न बनते जाते हैं, ब्राह्मण शक्ति संपन्न बन जाते हैं, तो संपूर्ण देव शक्ति जो दूसरों को शक्ति दे, तो बाबा निमित्त बना देता है फिर दूसरों को शक्ति देने वाला, इसे देवता बन जाते हैं। सर्वशक्तिवान की संतान, हमारा संपूर्ण स्वरूप देवता स्वरूप है, मंगता स्वरूप नहीं है, भिखारी स्वरूप नहीं है। तो इसलिए बाबा कहते मेरे से भी नहीं मांगो, बाबा से भी मांगना नहीं है, बाबा शक्ति दो, बाबा तो दे रहा है ना। तो संपूर्ण स्वरूप मंगता स्वरूप मनुष्य स्वरूप से बदल करके, मंगता स्वरूप बदल करके देवता स्वरूप बन जाएगा, भिखारी से दाता बन जाएगा। तो अभी हमको बाबा मनुष्य देवता बना रहे हैं और वो हमारा संपूर्ण स्वरूप दिव्य स्वरूप देवता स्वरूप है अथवा विष्णु स्वरूप है, जिसमें क्या है फिर बैलेंस है। बैलेंस किस बात का है? जो हम बाबा से ले रहे हैं वो दे रहे हैं। एक हाथ से दो हाथ से ले रहे हैं, दे रहे हैं, लेते जाए देते जाए तो अपनापन कुछ नहीं रहेगा। लेके रख लिया तो मेरापन आ जाएगा। इसीलिए चारों ही बातें जो बाबा ने हमको दी है, चारों ही सब्जेक्ट का बैलेंस रखने से हम अपनी स्टेज की संपूर्णता को प्राप्त करते हैं। विष्णु स्वरूप संपूर्ण स्वरूप है, श्री लक्ष्मी श्री नारायण संपूर्ण स्वरूप है। श्री लक्ष्मी जी के हाथ में कोई हथियार नहीं है, कोई अलंकार नहीं है, संपन्न स्वरूप है। तो जितना जितना हम अपने अंदर ये सर्वगुण संपन्न बनते चले जाएंगे, तो हमारा स्वाभाविक स्वरूप दिव्य स्वरूप नेचुरल स्वरूप, वो शक्ति स्वरूप रहेगा, दिव्य स्वरूप रहेगा। इसलिए चारों सब्जेक्ट के ये जो बाबा ने कल का अभ्यास करना है, तो हमको मन का मौन रखना है, तो मनन करने का, करते करते मन को मना हो जाएगी ना, कुछ और सोचना ही नहीं है, कुछ और बोलना ही नहीं है। एक वाणी में बाबा ने कहा था, अगर ज्ञान के सिवाय कुछ और बोलते हो ना, लास्ट वीक की मुरली में था, अगर ज्ञान की बातों के सिवाय आपस में कुछ बोलते हो, वो क्या है? ईवल है, ईवल बोलो नहीं, तो वो अपने आप ही व्यर्थ बोल, तो देव बोल, हमारे वचन भी बदल जाएंगे, कर्म भी बदल जाएगा। तो हमारी स्थिति ऐसी संपन्न बन जाएगी, सर्वगुण संपन्न, बैलेंस रखने से चारों ही सब्जेक्ट का, ज्ञान को योग से बैलेंस करें, योग को धारणा से बैलेंस करें, धारणा को सेवा से बैलेंस करें, या चार आपस में दोनों का बैलेंस करें। ज्ञान जो है वो धारणा से बैलेंस करें, ज्ञान है धारणा में आया तो ब्लिसफुल लाइफ बन जाएगी। ज्ञान को योग में बदली करेंगे, बैलेंस लाइफ बन जाएगी। योग से सेवा करेंगे, इन अलग अलग रीति से बैलेंस करते करते स्टेज एकदम ब्लिसफुल बन जाएगी। तो संपूर्ण स्टेज क्या है? हर ज्ञान की बात को सत्य स्वरूप में अपने जीवन में उतारे हम, प्रैक्टिकल स्वरूप में लाने से ही हमारे में संपन्नता, ज्ञान भी योग भी धारणा भी सेवा भी, जब जीवन में संपूर्ण उतर गई तो यही हमारी संपूर्ण अवस्था अथवा संपन्नता की अवस्था है। ओम शांति। Thank you.